नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान जारी, दोपहर 1 बजे तक 40% से अधिक मतदान की खबर। आंध्र प्रदेश और ओडिशा में भी विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाकी चरणों के लिए प्रचार जोरों पर। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने बिहार में कई रैलियां की। सर्वोच्च न्यायालय का झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अंतरिम जमानत देने से इनकार। सीबीएसई ने कक्षा 10 और 12 के बोर्ड परीक्षा परिणाम घोषित किए, लड़कियों ने बाजी मारी। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से। दोपहर समाचार के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में दोपहर 1 बजे तक कुल मिलाकर 40% से अधिक मतदान की खबर है। इस चरण में 9 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के 96 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जा रहे हैं। इनमें आंध्र प्रदेश की 25 सीटें, तेलंगाना की 17, उत्तर प्रदेश की 13, महाराष्ट्र की 11, मध्य प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल की 8-8, बिहार की 5 और झारखंड तथा ओडिशा की 4-4 सीटें शामिल हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की 1 सीट के लिए भी आज वोट डाले जा रहे हैं। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि तेलंगाना के कुछ संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए मतदान का समय बढ़ाया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विभिन्न मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें लगी हैं। युवा और महिला मतदाताओं में विशेष उत्साह है। प्रमुख उम्मीदवारों में केंद्रीय मंत्री तथा भाजपा नेता गिरिराज सिंह, अर्जुन मुंडा, जी किशन रेड्डी, अजय कुमार मिश्र, जनता दल यूनाइटेड के राजीव रंजन सिंह, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी, तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा तथा शत्रुघ्न सिन्हा और AIMIM के असुद्दीन ओवैसी शामिल हैं। आज ही आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव के एकल चरण में 175 निर्वाचन क्षेत्रों और ओडिशा विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 28 निर्वाचन क्षेत्रों में भी मतदान हो रहा है। इस चरण के मतदान में आज दोपहर 1 बजे तक 40% से अधिक मतदान की खबर है। पश्चिम बंगाल में लगभग 52%, मध्य प्रदेश में 48% से अधिक, झारखंड में लगभग 44%, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना में 40% से अधिक और उत्तर प्रदेश में लगभग 40% मतदान की खबर है। ओडिशा में 39% से अधिक, बिहार में 34% से अधिक, महाराष्ट्र में लगभग 31%, जम्मू कश्मीर में लगभग 24% मतदान दर्ज किया गया है। आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में 40% और ओडिशा विधानसभा चुनाव में 39% से अधिक मतदान की खबर है। अब हम मतदान के बारे में अपने संवाददाताओं से जानकारी लेते हैं। सबसे पहले रुख करते हैं लखनऊ का और उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी लेते हैं अपने संवाददाता सुशील चंद तिवारी से। सुशील, उत्तर प्रदेश में किस तरह के राजनीतिक समीकरण हैं? इस चरण में कौन कौन से प्रमुख उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं?
जी सिद्धार्थ, इस चरण में 13 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और ये 13 की 13 सीटें जो हैं पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में थीं। दिलचस्प बात यह है कि 2009 तक भारतीय जनता पार्टी 2009 में इन 13 में से किसी सीट पर भी विजय हासिल नहीं कर सकी थी, लेकिन पिछली बार 13 सीटें उसने जीती और ये सीटें तराई के इलाकों में हैं, लखीमपुर खीरी धौरहरा ऐसी सीटें हैं और कुछ सीटें जो है वो मध्य यूपी सेंट्रल यूपी जिसे कहा जाता है, जिसमें इटावा फरुखाबाद और कन्नौज जैसी सीटें हैं। कन्नौज सीट बड़ी महत्वपूर्ण सीट है क्योंकि यहां से समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने अंतिम दिन नामांकन किया था, वो यहां से मैदान में है और यही वो सीट है जहां से वो पहली बार लोकसभा पहुंचे थे। साल 2000 में उन्होंने उपचुनाव के जरिए इस लोकसभा सीट से जीतकर संसद का रास्ता तय किया था। इसके यहां पर वो सुब्रत पाठक को चुनौती दे रहे हैं जिन्होंने पिछली बार उनकी पत्नी डिंपल यादव को इसी सीट पर हराया था। वहीं दूसरी सीट खीरी की सीट है जहां से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी उम्मीदवार हैं, वो भी चर्चा में है। ये सीट बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि तिकुनिया कांड हुआ था, हम आपको पता है कि 2022 में जो जीप से कुचलने का मामला था उसको लेकर के विधानसभा चुनाव में भी उसकी गूंज थी और इस चुनाव में भी उसकी चर्चा हुई।
जी बिल्कुल, और सुशील हम सब की नजर भी इस पर बनी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद इस ताजा अपडेट के लिए। महाराष्ट्र की चुनाव की जानकारी के लिए रुख करते हैं मुंबई का, जहां मौजूद हैं हमारी संवाददाता प्रार्थना। प्रार्थना राज्य में बदलते गठबंधनों ने सत्ता संघर्ष को काफी दिलचस्प बना दिया है। राज्य की दो प्रमुख पार्टियों का विभाजन हुआ है, ऐसे में आप क्या बदलाव महसूस कर रही हैं?
हाँ जी सिद्धार्थ, तो महाराष्ट्र में पिछले कुछ वर्षों में राज्य की दो बड़ी पार्टियों का विभाजन हुआ। इस विभाजन के बाद यह पहला आम चुनाव है। शिवसेना का नेतृत्व सीएम एकनाथ शिंदे और शिवसेना यूबीटी का नेतृत्व उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। इसी तरह शरद पवार की एनसीपी और अजीत पवार की एनसीपी भी अलग अलग पार्टियों के रूप में चुनाव लड़ रही है। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली जो शिवसेना है और अजीत पवार के नेतृत्व वाली शिवसेना सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन का हिस्सा है, जबकि शरद पवार की एनसीपी और शिवसेना यूबीटी ने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया है और महाविकास आघाड़ी गठबंधन बनाया है। इससे मतदाताओं में भी थोड़ा बहुत भ्रम की स्थिति पैदा हुई है। और सिद्धार्थ, हम एक तरह से कह सकते हैं कि 2024 का जो चुनाव है वो इस लहजे से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही चुनाव इन पार्टियों का भविष्य तय करेगा। सिद्धार्थ,
धन्यवाद प्रार्थना इस तमाम जानकारी के लिए। और अब चलते हैं आंध्र प्रदेश और बात करते हैं विजयवाड़ा में मौजूद अपने संवाददाता नागार्जुन से। नागार्जुन, मतदान को लेकर लोगों के अंदर किस तरह का उत्साह है और राज्य के किन संसदीय क्षेत्रों में उम्मीदवारों के बीच कड़ा मुकाबला होने की संभावना है?
जी, आंध्र प्रदेश की सभी 175 विधानसभा सीटों और 25 लोकसभा सीटों के लिए मतदान आज सुबह शुरू हुआ था। पूरे राज्य में मतदाताओं की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखी जा रही है। मतदाता बड़ी संख्या में मतदान करने आ रहे हैं। प्रमुख नेताओं में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी प्रमुख और मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने पुलिवेंदुला से, पूर्व मुख्यमंत्री और तेलुगुदेशम पार्टी के प्रमुख एन चंद्रबाबु नायडू ने कुप्पम से
जी,
और जनसेना पार्टी प्रमुख के पवन कल्याण ने पितापुरम से विधानसभा के लिए लड़ रहा है। एपी बीजेपी प्रमुख रघुवाटी पुरंदेश्वरी ने राजमहेंद्रवरम से और एपी कांग्रेस पार्टी प्रमुख वाई शर्मिला रेड्डी ने कड़पा लोकसभा स्थान के लिए लड़ रही है।
जी जी, धन्यवाद नागार्जुन इन तमाम जानकारी के लिए। और अब रुक करते हैं तेलंगाना का और मतदान के बारे में जानकारी लेते हैं हैदराबाद से अपनी संवाददाता लक्ष्मी से। लक्ष्मी, इस समय मतदान को लेकर क्या माहौल है? लक्ष्मी से इस समय हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आर के जेनामणि ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा है कि आज जिन क्षेत्रों में मतदान हो रहा है वहां गर्मी की स्थिति सामान्य है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और दक्षिण ओडिशा में सामान्य तापमान दर्ज किया गया।
यहाँ इलेक्शन अभी चल रहा है, जैसे आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, रायलसीमा है, पूर्वी आंध्र प्रदेश जो है, जो तापमान उधर है 40 डिग्री से नीचे रहेगा मेजोरिटी पार्ट में, और जो दक्षिण उड़ीसा और वेस्ट बंगाल और पार्ट ऑफ एमपी और हमारा जो नॉर्थ मध्य महाराष्ट्र एरिया है वहाँ तापमान 40 से 42 डिग्री तक रहेगा, लेकिन कहीं भी हीट वेव प्रिवेलिंग नहीं कर रहा है। इसको सभी लोग को अनुरोध है कि वो अपना वोट डाले।
इस बीच लोकसभा चुनाव के शेष तीन चरणों के लिए प्रचार जोरों पर है। विभिन्न दलों के वरिष्ठ नेता जनसभाएं और रोड शो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज बिहार में कई रैलियां कर रहे हैं। उन्होंने आज सवेरे हाजीपुर और मुजफ्फरपुर में जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने राज्य की जनता से देश के विकास के लिए मतदान करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस कभी भी लोगों के कल्याण के लिए काम नहीं करेंगे, क्योंकि वे अगली पीढ़ी के लिए संपत्ति जुटाने में व्यस्त हैं। श्री मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार में देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है तथा रोजगार के और अवसरों का सृजन हो रहा है।
ये एनडीए की सरकार है जो बिहार में कानून व्यवस्था को पटरी पर लाई है। अब नक्सलवाद प्रभावित जिले भी तेजी से कम हो रहे हैं। जब शांति स्थापित हो रही है तो उद्योग भी लौट रहे हैं, निवेश भी आ रहा है, और आप जानते हैं जब निवेश आता है तो रोजगार के भी मौके बढ़ाता है।
इससे पहले श्री मोदी ने पटना सिटी में तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब का दौरा किया। श्री मोदी शाम को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मेगा रोड शो करने वाले हैं। वे कल वाराणसी लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के रायबरेली में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने वादा किया कि यदि केन्द्र में कांग्रेस और आईएनडीआई गठबंधन की सरकार बनी तो वो पहला काम गरीब किसानों के ऋण माफ करने का करेगी।
मैं आपको एक वायदा करता हूं, अगर कांग्रेस पार्टी की इंडिया गठबंधन की सरकार आ गई तो आपका कर्जा माफ करना मेरा पहला काम होगा। और यही मैं आपको कहना चाह रहा हूं, पहला काम किसानों के लिए कर्जा माफी।
ये समाचार हमारी वेबसाइट newsoneair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsoneair पर भी उपलब्ध हैं।
लोक निर्णय 2024
आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम
हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर।
चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर,
विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण,
दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए
लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024।
दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने एक समाचार पत्र को दिए साक्षात्कार में कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस ने कभी भी विकास को प्राथमिकता नहीं दी और केवल तुष्टीकरण की राजनीति करती रही। श्री मोदी ने कहा कि भाजपा के विकास वाले शासन का नतीजा है कि जिन राज्यों को कभी बीमारू राज्य कहा जाता था वे अब फल फूल रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कथित जमीन घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में आज झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अंतरिम जमानत देने से इंकार कर दिया है। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत का हवाला देते हुए हेमंत सोरेन ने भी लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के चुनाव प्रचार करने के लिए जमानत मांगी थी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने सोरेन की याचिका सुनी जिसमें उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। मामले की अगली सुनवाई 17 मई को होगी। सामाजिक आर्थिक मुद्दों के विश्लेषण से संबंधित स्कॉच ग्रुप ने दावा किया है कि वर्ष 2014 से 2024 तक प्रतिवर्ष औसतन 5,14,00,000 रोजगार अवसर सृजित हुए हैं। स्कॉच ग्रुप ने आज नई दिल्ली में अपनी रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के अनुसार इस दशक के दौरान कुल 51,40,00,000 रोजगार सृजित हुए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने आज 10वीं और 12वीं कक्षा के नतीजे घोषित किए। सीबीएसई ने एक बयान में कहा है कि 12वीं में कुल 87.98% छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। यह प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में 0.65% अधिक है। 24,000 से अधिक उम्मीदवारों ने 95% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं और 1,16,000 से अधिक छात्रों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। लड़कियों का उत्तीर्ण प्रतिशत लड़कों की तुलना में 6.40% अधिक है। 10वीं बोर्ड परीक्षा में कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 93.60 रहा। लड़कियों का उत्तीर्ण प्रतिशत 94.75 है जबकि लड़कों का उत्तीर्ण प्रतिशत 92.71 है। परिणाम बोर्ड की वेबसाइट www.cbseresults.nic.in, www.cbse.gov.in के साथ साथ डिजीलॉकर और उमंग ऐप्स पर भी देखे जा सकते हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। कल दो अलग अलग मुकाबलों में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दिल्ली कैपिटल्स को 47 रन से और चेन्नई सुपर किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हरा दिया। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस परिसंघ आईटीएफ के जूनियर 30 टूर्नामेंट का आज उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुभारंभ हुआ। लगभग 125 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। इनमें उत्तर प्रदेश के भी कई खिलाड़ी हैं। पेरिस ओलंपिक में भारत के 6 पहलवान शामिल होंगे जिनमें 5 महिलाएं हैं। अमन सहरावत और निशा दहिया ने इस्तांबुल तुर्की में विश्व ओलंपिक कुश्ती क्वालिफायर में भारत के कोटे की संख्या 6 तक पहुंचा दी। केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज ईरान के लिए रवाना हो गए। उनकी यात्रा के दौरान भारत और ईरान के बीच महत्वपूर्ण चाबहार बंदरगाह समझौते पर हस्ताक्षर होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान जारी। दोपहर 1 बजे तक 40% से अधिक मतदान की खबर। आंध्र प्रदेश और ओडिशा में भी विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाकी चरणों के लिए प्रचार जोनों पर प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने बिहार में कई रैलियां की। सर्वोच्च न्यायालय का झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अंतरिम जमानत देने से इंकार। सीबीएसई ने कक्षा 10 और 12 के बोर्ड परीक्षा परिणाम घोषित किए। लड़कियों ने बाजी मारी। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।